ಹರವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಮೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಶ್ರೀಯುತ ಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ಗುರುನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ ಶ್ರೀರೂಪಾಂ ಸಾಗರ ಜಾತಾಂ ಸಹಗನ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಾಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಾಂ ಸಾವಧೂತಾಂ ಪರಿಜನ ಸಹಿತಾಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾನ್ ಸಹಗನ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧೋ ದೀನಬಂಧು ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮಸ್ತುತೆ. ರಕ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನು ಸುತೇ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿ ಪ್ರಿಯ ವಾಂಚಾಕಲ್ಪತ ರೂಪಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೇವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತಮ್ಮ ಆಜ್ ಸೆ ನಯಾ ಜೊ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೈ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಕಾ ವೋ ಶುರೂ ಕರೆಂಗೆ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಹಮ್ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ತೆ ಆಯೇ ಹೈ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೆ ಸನ್ಯಾಸ ಲೀಲಾ ಕೆ ಬಾದ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕಾ ಜೊ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ಜೊ ಗಮನ್ ಹೈ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಹೈ ಉಸ್ಕಾ ಹಮ್ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ. ತೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅಭಿ ಕಹಾ ಪಹುಂಚೆ ಥೆ? ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ರೇಮುನಾ ಪಹುಂಚೆ ಥೆ ಔರ್ ವಹಾ ಉನ್ಹೋನೆ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಸಬ್ಕೋ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕಿ ಮಹಿಮಾ ಔರ್ ಮಾಧವೇಂದ್ರಪುರಿ ಜೋ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತ ಥೆ ಉನ್ಕಿ ಮಹಿಮಾ ಸುನಾಯಿ ಥಿ. ತೊ ಫಿರ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆಗೆ ಜೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಜಗನ್ನಾಥ್ಪುರಿ ಕಿ ಓರ್ ರೇಮುನಾ ಸೆ, ತೊ ಉಸ್ಕಾ ವರ್ಣನ ಹಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಪದಭ್ಯಾಂ ಚಲನ್ ಯೇ ಪ್ರತಿಮಾ ಸ್ವರೂಪೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವೋ ಹಿ ಶತಃ ಗಮ್ಯಂ ದೇಶಂ ಯಯೋ ವಿಪ್ರಕೃತೇದ್ಭುತೇಹಂ ತಂ ಸಾಕ್ಷಿ ಗೋಪಾಲಮಹಂ ನತೋಸ್ಮಿ. ಯಾ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕರ್ ರೇ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಕವಿರಾಜ್. ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಕವಿರಾಜ್ ಕಿ ಖಾಸಿಯತ್ ಹೈ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಕಿ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಕಿ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಜೈಸಾ ದಿವ್ಯ ಗ್ರಂಥ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ ಕಿ ಪೂರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮೇ ನಹೀ ಹೈ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಾ ಏಕ ಅಪ್ನಾ ಸ್ಥಾನ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಕಿ ವಿಶೇಷತಾ ಹೈ. ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಹಾ ಕರ್ತೆ ಥೆ ಸಾರೇ ಗ್ರಂಥ ಡೂಬ್ ಜಾಯ್ ಏಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಫ್ಲಡ್ ಆ ಜಾಯ್ ಮಾಯಾಪುರ ಮೇ ತೋ ಆಪ್ ದೋ ಗ್ರಂಥೋ ಕೋ ಪ್ರಯಾಸ ಕರೋ ಬಚಾನೆ ಕಾ, ಭಾಗವತಂ ಔರ್ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಔರ್ ಉನ್ಮೇ ಭಿ ಆಪ್ ಪೂರಾ ಡೂಬ್ ರಹೇ ಹೋ ಹಾ ತೋ ಭಾಗವತಂ ಆಪ್ಸೆ ಹಾಥ್ ಸೆ ಛುಟ್ ಭಿ ಜಾಯ್ ಲೇಕಿನ್ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಕೋ ಕ್ಯಾ ಕರೋ ಪಕಡ್ ಕೆ ರಖೋ. ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಹಾ ಕರ್ತೆ ಥೆ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಜೋ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜೋ ರಹಸ್ಯ ಹೈ ಉಸ್ಕಿ ಜೋ ಶಿಕ್ಷಾಯ ಹೈ ಉಸ್ಕಾ ಜೋ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೈ ವೋ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಮೇ ಇತನಾ ಅದ್ಭುತ ರೂಪ ಸೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಿಯಾ ಹೈ ಕಿ ಹರ್ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಸ್ಕೋ ಸರಳತಾ ಸೆ ಸಮಝ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಔರ್ ದಿವ್ಯ ಜೋ ರಹಸ್ಯ ಹೈ ಭಾಗವತಂ ಕೆ ಉಸ್ಕೋ ಪ್ರಕಟ ಕಿಯಾ ಹೈ. ಇಸ್ಲೇ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಬಹುತ್ ವಿಶೇಷ ಗ್ರಂಥ ಹೈ. ಶುಣಿತೆ ಶುಣಿತೆ ಸೆ ಹಾ ಕಹತೆ ಹೈ ಐಸೆ ಸಮಝ ಮೇ ನಹೀ ಆತಾ. ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಕವಿರಾಜ್ ಕಹ ರಹೇ ಹೈ ಕಿ ಇಸ್ ಬುಕ್ ಕೋ ಇಸ್ ಗ್ರಂಥ ಕೋ ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಸುನ್ನಾ ಹೋಗಾ. ಶುಣಿತೆ ಶುಣಿತೆ ಸೆ ಹೈ ಸುನ್ಕರ್ 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 ಫಿರ್ ಯೇ ಜೋ ಇಸ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೈ ವೋ ಸಮಝ ಮೇ ಆನೆ ಲಗೆಂಗೆ. ಹಾ ತೋ ಯಹಾ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಕವಿರಾಜ್ ಜೋ ಭಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಹೈ ಅಪ್ನಾ ಹರ್ ಏಕ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಾ ಕೋಯಿ ಕಥಾ ಭಿ ಸುನಾ ರಹೇ ತೋ ಉಸ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಉಸ್ಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಭಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ತೆ ಜಾತೆ ಹೈ ಔರ್ ವಿಶೇಷ ರೂಪ ಸೆ ಹರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೆ ಪಹಲೆ ಪೂರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಾ ಸಮರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಯೇ ಖಾಸಿಯತ್ ಹೋತಾ ಹೈ ಕಿಸಿ ಭಿ ಜೋ ದಿವ್ಯ ರೈಟರ್ ಹೈ ಜೈಸೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಹೈ ತೋ ಏಕ ಪ್ರಕಾರ ಸೆ ಭಾಗವತಂ ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಟೋ ಕಾ ಜೋ ಪಹಲಾ ಶ್ಲೋಕ ಹೈ ಉಸಿ ಕೋ ಕಾ ವಿಸ್ತಾರ ಹೈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಏಕ ಪ್ರಕಾರ ಸೆ. ತೋ ಜೋ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಕವಿರಾಜ್ ಹೈ ವೋ ಪೂರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೋ ಸಮರೈಸ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಔರ್ ಹಮಾರೇ ದೋ ಆಚಾರ್ಯೋ ನೇ इस पर टीका लिखी है। एक थे भक्ति विनोद ठाकुर और एक थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज और आगे चल के प्रभुपाद। तो इन तीनों आचार्यों ने चैतन्य चरितामृत पर टीका लिखी। तो चैतन्य चरितामृत गुम हो जाए तो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन गुम हो गया, ऐसे समझना चाहिए। क्योंकि स्थापित नहीं कर सकते चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन बिना चैतन्य चरितामृत के। प्रभुपाद ने तो कहा कि हजारों साल के बाद यदि सारे ग्रंथ लुप्त हो जाए, कोई भी एक उनका बुक बच जाए, तो इतना प्रभावशाली है कि पुनः ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन शुरू कर सकता है प्रभुपाद बुक्स। तो चैतन्य चरितामृत जब भक्ति विनोद ठाकुर केदारनाथ दत्त के नाम से उनको जाना जाता था और ओडिशा में वो एक टीचर थे, तो उस समय उनको बहुत लालसा हुई कि ये चैतन्य महाप्रभु बंगाल में उन्होंने कोई आंदोलन शुरू किया था, उनके बारे में मुझे जानना है। तो किसी एक व्यक्ति ने कहा कि उनका एक मित्र था कटक में, उसने कहा कि आपको चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए, उसके बिना आप महाप्रभु के आंदोलन को नहीं समझ सकते, महाप्रभु की जो इच्छा है उसको नहीं समझ सकते। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत ये किया और फिर जब वो खड़गपुर में थे तब उनको एक चैतन्य चरितामृत का कितने साल के बाद किसी जगह एक पुराना कॉपी मिला और वो भी अस्पष्ट था। तो वो वहां से वृंदावन आए, बाकी बंगाली जो भक्त थे उनके पास था, उनसे करेक्शन करवाए। तो इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के इस रिफॉर्म किया आंदोलन को, वही थे सबसे पहले प्रणेता इस आंदोलन को रिफॉर्म करने वाले, नहीं तो एक प्रकार से लुप्त हो गया था ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन। तो ऐसे ही उनके ही पुत्र थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती, वो भी बहुत जोर देते थे इस शिक्षा को। कोई भी भक्त ज्वाइन करता था उसको ये तीन ग्रंथ पकड़ाते थे, एक था प्रार्थना, एक था उपदेशामृत और एक था चैतन्य भागवत, महाप्रभु के बारे में जानो। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि व्यक्ति को 108 बार चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए। जब मैंने उनका ये पढ़ा तो मैं अवाक हो गया। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं क्योंकि मैंने पढ़ा है तो उन्होंने 108 बार चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत आदि ग्रंथों को पढ़ा था। उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, भक्ति सिद्धांत महाराज का मेमोरी फोटोग्राफ मेमोरी कहा जाता है उनको। वो जैसे देख एक बार जो भी चीज उन्होंने पढ़ी है जीवन में या जो भी चीज सुने हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज भूलते नहीं थे। क्यों नहीं भूलते? एक तो भगवान के महान भक्त थे, दूसरा नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हैं। तो जो मेधा है, मेधा का मतलब क्या है? बुद्धि, स्मरण शक्ति बढ़ती है। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत महाराज जब अपने युवा अवस्था में थे तो उन्होंने एक स्टडी सर्कल शुरू किया था, चिर कुमार सर्कल, ऐसे उसका कुछ नाम दिया था असेंबली, चिर कुमार असेंबली। मतलब चिर कुमार मतलब चिर मीन्स निरंतर, कुमार का मतलब ब्रह्मचारी, जो आजीवन ब्रह्मचारी रहे, ऐसा असेंबली उन्होंने स्कूल डेज में बनाया था। तो कई मित्र थे तो कोई भी नहीं रह पाया, केवल एक ही पर्सनैलिटी रहे नैष्ठिक जीवन में, वो कौन थे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। तो उनके जो मित्र हैं उनका जो बायोग्राफी में बताते हैं कि वो बहुत ये थे भक्ति सिद्धांत महाराज कट्टर, तो कहते वही रह पाए, बाकी हम लोग के लिए बहुत मुश्किल हुआ। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत महाराज चैतन्य महाप्रभु के बड़े ये थे। और उस दिन हमने वो ड्रामा में भी देखा कि उनको कैसे प्रेरणा मिली इस प्रीचिंग आंदोलन को गंभीरता से लेने के लिए। क्योंकि जब वो उन्होंने नाम व्रत लिया था, कितने नाम ला नाम चांट करने का व्रत लिया था? एक बिलियन, कितने? एक मिलियन नहीं, एक बिलियन, मतलब एक अब्ज शायद, एक अरब नाम। एक अरब मीन्स रोज 3 लाख नाम जप करते थे, 64 राउंड्स, और ऐसा उन्होंने 9 साल 6 महीने समथिंग किया और बिल्कुल एक ही जगह डट के ऐसे थे। बस स्नान करने के लिए सुबह जाते थे भक्ति सिद्धांत महाराज और दिन में खुद अपना जो भोजन है वो खुद कुकिंग करते थे। आज भी कई ऐसे साधुज हैं जो प्रसाद के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ, क्योंकि प्रसाद साधना पर बहुत बड़ा ये डालता है, प्रभाव डालता है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज तो स्वयं कुकिंग करते थे अपने हाथ से, और क्या बनाते थे, खिचड़ी, और उसमें ना मिर्च ना नमक, ऐसी खिचड़ी। और वो जो मायापुर में खुद ने एक झोपड़ी बनाया घास का, और ये यंग थे बिल्कुल, और इतने उस समय भारत के सबसे बड़े विद्वान थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती। हाँ, तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ये व्रत लिया कि ये उसको शतकोटि नाम यज्ञ, उन्होंने नाम दिया था उसको शतकोटि नाम यज्ञ। शतकोटि मीन्स 100 करोड़, मीन्स 1 अरब हो गया ना, 1 अब्ज। हाँ, तो ऐसे नाम लेने का उन्होंने व्रत लिया था, और रोज ये 3 लाख नाम हरि नाम लेते थे। और फिर जब उनके गुरु महाराज अप्रकट हुए और भक्ति विनोद ठाकुर भी अप्रकट हुए, जो उनके बहुत क्लोज और गाइडेंस उन्हें मिलता था आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज चिंता में थे उनके विरह में। तो चैतन्य चरितामृत का एक पन्ना फटा हुआ हवा से आता है उनके पास, हवा से यहाँ लगता है जब वो जप कर रहे थे, देखते अरे क्या है। तो उन्होंने देखा, वो सनातन शिक्षा में से एक वो पेज था चैतन्य चरितामृत के, सनातन शिक्षा, और उसमें वो चीजें दी थी। तो प्रेरित हो जाते हैं चैतन्य चरितामृत के द्वारा। तो आज भी बंगाल उड़ीसा में हजारों लोग हैं जो गाते रहते हैं महाप्रभु के जो गुणगान है वो गाते रहते हैं चैतन्य चरितामृत आदि। तो ऐसा चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज अपने 90 साल की आयु में कंपाइल करते हैं। आमी आती वृद्ध लिखिते कापिते कर, उन्होंने जब आदि लीला खत्म किया और मध्य लीला शुरू किया ना, तब उन्होंने सोचा कि शायद मैं इस वीक के अंदर शरीर त्यागने वाला हूं, ऐसे लगा। क्योंकि उनका शरीर, वो कहते मैं लिख नहीं पा रहा हूं और मेरे हाथ कांप रहे हैं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक अद्भुत बात क्या महसूस हो रही है, फिर भी मैं लिख रहा हूं। वो कह रहे हैं आमी आती वृद्धा तुर का लिखिते कापिते कर, मेरे हाथ हिलते हैं, कांप रहे हैं। लेकिन ऐसे कृष्णदास कविराज ने ये ग्रंथ लिखा, कहते मैं नहीं लिख रहा हूं, मदन मोहन लिखा है मोरे, मैं कौन लिख रहा है मेरे हाथों से, कृष्ण साक्षात मदन मोहन, जो मदन कामदेव को भी आकर्षित करने वाले। तो उन्होंने ये ग्रंथ लिखा तो जगन्नाथ वृंदावन के सारे भक्त बहुत आनंदित हुए। जीव गोस्वामी को प्रेजेंट किया है बुक, जीव गोस्वामी ने पढ़ा, फिर सारे बाकी वैष्णवों ने उसको अध्ययन किया करते थे चैतन्य चरितामृत को। तो ऐसे चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज की एक बहुत बड़ी अमूल्य देन है, निधि है। हाँ, ये संपत्ति है जो उन्होंने दी है। उन्होंने नहीं दिया होता, चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को कोई व्यक्ति समझ नहीं पाता, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतम का ग्लोरी वास्तव में बढ़ाने आए थे भागवतम के, और वही ग्लोरीज को कृष्णदास कविराज ने इस ग्रंथ के द्वारा स्थापित किया। तो यहाँ ये जो चैप्टर है मध्य लीला का, 5th चैप्टर, द एक्टिविटीज ऑफ साक्षी गोपाल, साक्षी गोपाल के कार्यकलाप। तो इस पहले श्लोक में वो कहते हैं पदभ्याम चलम ये प्रतिमो स्वरूपो ब्रह्मान्य देवो हि शतः गम्यम, कि कहते हैं कि एक जो प्रतिमा रूप में मैं उस भगवान को नमस्कार करता हूं जो ब्राह्मण्य देव हैं, जो साक्षी गोपाल के रूप में प्रकट हुए एक ब्राह्मण को लाभ देने के लिए। और ऐसे साक्षी गोपाल 100 दिन चलते हुए कर्नाटका गए थे। कितने दिन, 100 दिन चल रहे थे भगवान उस भक्त के पीछे, और अपने ही पावन से। इस श्लोक में कृष्णदास कविराज ऐसे नहीं कि कोई उठा के ले गया था, कोई उठा के ले जाना मीन्स किसी और के पाँव से हम चलते हैं। हाँ, तो लेकिन भगवान अपने पाँव से चले, तो ऐसे अद्भुत कार्यकलाप करने वाले साक्षी गोपाल को मेरा प्रणाम है, वो कहते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो जय जय श्री चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय, अद्वैत आचार्य और सारे भक्तों की जय हो। कितना आनंद है कृष्णदास कविराज को। चलते चलते आयला जाजपुर ग्राम, वराह ठाकुर देखी करेला प्रणाम। अभी महाप्रभु हम बालेश्वर नाम का डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, वहां से अभी जाजपुर आते हैं। जाजपुर कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? डिस्ट्रिक्ट है, तो जाजपुर डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है, वहां आते हैं चैतन्य महाप्रभु। और वह लॉर्ड वराह का विग्रह है, वराह देखे थे, वराह भगवान का दर्शन करते हैं। नृत्य गीत कैल प्रेमे बहुत अस्तवान, जाजपुरे से रात्रि करिल जापन। तो वराह देव, वराह देव कौन है? लॉर्ड वराह भगवान के एक इनकार्नेशन है, पता है ना? तो बोल नहीं रहे आप लोग। वराह देव क्यों प्रकट हुए थे? किसको? हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष जिसकी आंखें किस पे लगी रहती है? किस पर? हिरण्याक्ष। प्रभुपाद लिखते हैं जिसकी आंखें हमेशा हिरण्य गोल्ड के प्रति रहती है। और हिरण्यकश्यपु जो गोल्ड और बेड के प्रति आ सकते हैं, ब्रेड के प्रति नहीं, बेड। तो ऐसे हिरण्याक्ष का संहार करने के लिए वराहदेव अवतरित हुए थे। चैतन्य महाप्रभु भगवान के सामने नृत्य गीत करते हैं, प्रेमे बहुत स्तवन, बहुत प्रार्थनाएं करते हैं डेटिस के सामने। तो प्रार्थना एक हमारे आध्यात्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। कटके आयला साक्षी गोपाल देखिते, गोपाल सौंदर्य देखी हैला आनंदिते। तो वहां से कटक आए, तो आप लोग गए ना जगन्नाथपुरी लास्ट ईयर, तो साक्षी गोपाल अभी कहाँ है? जगन्नाथपुरी है। तो पहले जगन्नाथपुरी नहीं थे साक्षी गोपाल। साक्षी गोपाल पहले तो कर्नाटका गए विद्यानगर वृंदावन से, पहले गोपाल नाम था। और फिर वहां से राजा उनको ले आते हैं जगन्नाथपुरी, और वो जगन्नाथ मंदिर में रहने लगते हैं। तो जगन्नाथ जी ने देखा कि सारे अच्छे अच्छे भोग उनको दिए जा रहे हैं, तो इन दोनों में फाइट हो गया, जगन्नाथ जी और साक्षी गोपाल। तो फिर राजा ने साक्षी गोपाल के लिए बहुत दूर एक गांव में मंदिर बना दिया, तब से साक्षी गोपाल वहां रहने लगे। और उससे पहले कटक में उनको रखा था। कटके आइला साक्षी गोपाल देखिते, तो चैतन्य महाप्रभु कटक आते हैं और साक्षी गोपाल का दर्शन करते हैं, और साक्षी गोपाल के सौंदर्य को देखने मात्र से आनंद का अनुभव करते हैं। प्रेमावेश नृत्य गीत कैल कतक शान, आविष्ट है या कैल गोपाल स्तवान। तो प्रेम के आवेश में चैतन्य महाप्रभु नृत्य गीत आदि करते हैं कुछ क्षणों के लिए, और गोपाल गोपाल की स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं और उसमें आविष्ट हो जाते हैं। सही रात्रि तहा रही भक्त गण संगे, गोपालेर पूर्व कथा सुने बहुरंगे। तो उस रात को कटक में निवास किया चैतन्य महाप्रभु, और उनके साथ चार भक्त थे। कौन से थे वो चार भक्त? मैं हमेशा पूछता हूँ। नित्यानंद प्रभु, मुकुंद दत्त, जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित। ये चार भक्त हमेशा आपको ये रहना चाहिए स्मरण। सही रात्रि चैतन्य महाप्रभु उसी रात को वहां रुके, और गोपाल एर पूर्व कथा, गोपाल का प्राकट्य कैसे हुआ वृंदावन से, ये गोपाल इतने दूर ओडिशा कैसे चले गए या कर्नाटका कैसे गए, उसका वर्णन चैतन्य महाप्रभु ने सुनीला बहुरंगे। ऐसे नहीं कि टेंशन में आकर श्रवण करने के लिए बैठे, या कोई शेड्यूल था क्लास का इसलिए बैठे महाप्रभु ने, कैसे सुना उन्होंने? सुने बहुरंगे, रंगे का मतलब है आनंद, प्लेजर। बहु मीन्स खूब, बहुत आनंद से हाँ वो बैठे गोपाल के बारे में सुनने के लिए। नित्यानंद गोसाई जबे तीर्थ भ्रमिला, साक्षी गोपाल देखी बारे कोटक आईला। तो नित्यानंद प्रभु जो साक्षात बलराम है, बलराम हैलो निताय, बलराम है ऐसे बलराम जो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु अपना जो स्वरूप प्रकट करने से पहले पूरे भारत में भ्रमण करते हैं। नित्यानंद प्रभु दिल्ली भी आते हैं, पांडव किला आदि कई स्थानों में भ्रमण करते, कुरुक्षेत्र, बद्रीनाथ, और वैसे वो ओडिशा भी जाते, जगन्नाथ जी का दर्शन करते, वहां साक्षी गोपाल को भी देखते हैं। साक्षी गोपाल रे कथा सुनी लोक मुखे, सही कथा कहे प्रभु सुने महासुखे। तो साक्षी गोपाल की जो कथा है, उनका दिव्य लीला है, नित्यानंद प्रभु जब उस गांव में आए थे कटक में भ्रमण करते करते भारत, तो वहां वहां के जो पुजारी आदि है उनसे उन्होंने सुना था। और इस जो नरेशन अभी नित्यानंद प्रभु बता रहे, तो चैतन्य महाप्रभु बड़े सुख के साथ इसको सुनाते हैं। पूर्व विद्यानगर द्वित ब्राह्मण, तीर्थ करी बारे दुहे करी लगमान। तो पूर्व विद्यानगर, हम सबने उस दिन ड्रामा देखा 26 जनवरी में साक्षी गोपाल, तो उसमें वर्णन आया था कि पहले ये जो विद्यानगर के दो ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करने के लिए विद्यानगर से निकल पड़ते हैं। गया वाराणसी प्रयाग सकल करिया, मथुरा ते आयला दुहे आनंदित हैया। तो वो सारे जो दो ब्राह्मण थे गया वाराणसी प्रयाग आदि, ये भारत के मेन मेन तीर्थ हैं, जो मुक्ति देने वाले हैं या भक्ति की कामना करने वाले वाले लोग ऐसे कई तीर्थों का भ्रमण करते हैं। तीर्थों में क्यों जाना चाहिए? क्योंकि जो भौतिक आसक्ति है वो हमें कम होने में सहायता मिलती है तीर्थों में जाने से, और आध्यात्मिकता के ओर हमारा ये लगता है, झुकाव हो जाता है। तो ऐसे ये दो ब्राह्मण गया, वाराणसी और प्रयाग, इन स्थानों में गए। तो गया क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों? क्योंकि वहां भगवान एकपदी के रूप में निवास करते हैं, जिनको विष्णु के चरण कमल है। वहां गय नाम का एक असुर था जिसको मारा भगवान ने, इसलिए उसका नाम गया पड़ा। तो ये गया में भगवान ने अपना एक चरण रखा हुआ है विष्णु का, इसलिए उस स्थान को एकपदी भी कहते हैं। साक्षात विष्णु का चरण देखना है तो गया जाके देखो। और गया में, गया इसलिए प्रसिद्ध है, एक तो वहां पिंडदान आदि करते हैं, सारे पितरों को पिंडदान करते हैं। भगवान राम दशरथ का पिंडदान करने के लिए गए थे, पांडवाज आदि गए थे वहां पिंडदान करने। और इवन भगवान के एक जो अवतार है, कौन से अवतार? बुद्ध, बोध गया। तो वहां उस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध बैठे थे, उन्होंने दिव्यता अर्जन की। तो ऐसे जो गया है वहां चैतन्य महाप्रभु भी अपने स्कूल डेज में गए थे। कौन से डेज में? स्कूल डेज में, जब वो पढ़ाई करते थे और पढ़ाते थे, साथ साथ दोनों चीजें करते थे, खुद पढ़ते थे और ट्यूशन भी लेते थे। तो जो चैतन्य महाप्रभु एक दिन कहते हैं कि मैं अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए अपनी माता से पूछते कि गया जाना चाहता हूं, और गया जाकर चैतन्य महाप्रभु हरि नाम दीक्षा प्राप्त करते हैं केशव नहीं ईश्वरपुरी के द्वारा। और वाराणसी क्या है? वाराणसी का दूसरा नाम बनारस है, ये नाम अंग्रेजों ने रखा बनारस। तो वाराणसी ये शिवजी का स्थान है, जिसे काशी भी कहते हैं ना, काशी विश्वनाथ। हाँ, तो जब शिवजी का नया नया मैरिज हुआ था तो देखा कि वो तो वैसे ही ये है, बैरागी है, एक जपमाला हाथ में, और बस कुछ प्रसाद मिला तो मिला, नहीं तो वो जप करते रहते दिन रात या कृष्ण कथा करते रहते। तो वो अपनी पत्नी तो बहुत मांगे कर रहे थे, हमारी मांगे पूरी करो नहीं तो कुर्सी खाली करो, तो आप पति हो तो आप मेरी डिमांड्स को पूरी करो, मेरे लिए गहने, मेरे लिए क्लोदिंग, मेरे लिए रहने का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। तब शिव जी ने ये बड़ा नगरी क्रिएट किया, कौन सा, काशी। वहां कुछ ही साल निवास किए, फिर वैराग्य उत्पन्न आया, आनंद नहीं मिल रहा था वहां, वहां से निकल पड़े, एक राजा को राजा बना दिया जिसका नाम था काशीराज। आगे चल के वो कृष्णा बुक में बहुत विस्तार से वर्णन आता है काशी के बारे में। तो फिर शिव जी चले जाते हैं और उस घटना से कैसे उनके प्रति, कृष्ण के प्रति अपराध करते हैं, फिर भगवान उनको डांटते हैं और उनको फिर भुवनेश्वर नाम का स्थान प्रदान करते हैं। हाँ, भुवनेश्वर में जाके निवास करो आप। उस स्थान का नाम उस समय एकाम्र वन था, मतलब भुवनेश्वर में पहले एक बहुत बड़ा आम्र का वृक्ष था, मैंगो ट्री, कई योजन कई किलोमीटर फैला हुआ था। तो वो स्थान दिया कि वहां जाके तुम रहो, क्योंकि शिव जी ने कहा मैं आपसे दूर रहूंगा तो ऐसे कुछ उटपटंग हरकतें करता रहूंगा, कभी आपके प्रति अपराध कर दिया, कभी किसी और के प्रति, तो मैं आपके संरक्षण में रहना चाहता हूँ। किसके संरक्षण में? कृष्ण के, आपके प्रोटेक्शन में रहना चाहता हूँ। तो ठीक है, भगवान कहते मेरे नजदीक रहो, मेरा जो प्रिय स्थान है वो क्या है, पुरुषोत्तम। हाँ, तो भगवान उनको फिर भुवनेश्वर नामक स्थान देते हैं और वो गेटवे ऑफ जगन्नाथपुरी कहते हैं उसको। भुवनेश्वर को एंट्री करना है तो उसका गेट क्या है, तो ऐसे कहा जाता है जगन्नाथ जी का दर्शन करने से पहले व्यक्ति को वहां शिव जी का प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वैष्णवाना यथाशंभु। चैतन्य महाप्रभु भी आप आगे देखेंगे तो वो क्रॉस नहीं किए, सबसे पहले गए लॉर्ड शिवा का दर्शन किए, उनको प्रेयर आदि किए, काफी चीजें हैं। शिवाष्टकम आता है जो महाप्रभु ने 8 श्लोक शिव जी के ग्लोरीज में चांट किया था चैतन्य भागवत में। तो ऐसे शिव जी जो वैष्णव में श्रेष्ठ हैं, तो जो भक्त हैं उनकी कृपा की याचना करता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान को प्रिय है लॉर्ड शिवा। तो फिर प्रयाग भी जाते हैं वो ब्राह्मण। प्रयाग क्या है? त्रिवेणी संगम है, तीन नदियां वहां एकत्रित होती है और सारे तीर्थों का जो राजा है वो कौन है? प्रयाग है। क्योंकि भारत में तो करोड़ों तीर्थ हैं, करोड़ों करोड़ों तीर्थ हैं, अनगिनत, उन सब का जो किंग है वो ये प्रयाग है, जिसको तीर्थ राज भी कहा जाता है। तो ऐसे जो दो ब्राह्मण है सकल करिया मथुरा में आके पहुंच गए। वन यात्राए वन देखी देखी गोवर्धन, द्वादश वन देखी शेषे गेला वृंदावन। तो वन यात्रा करते करते जब मथुरा में आए ये दो ब्राह्मण, तो उन्होंने 12 वन देखे और ऐसे वनों को देखते देखते वो वृंदावन में चले गए। एक वन का नाम क्या है? वृंदावन। तो ऐसे 12 वन है जहाँ प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि यमुना के पूर्व की ओर भद्र वन है, बिल्व वन है, लोह वन है, भांडिर वन है और महावन है। महावन में भगवान ने जन्म लिया था गोकुल। और फिर पश्चिम में यमुना के मधुवन है, ताल वन है, कुमुद वन है, बहुला वन है, काम्य वन है, खादिर वन है और वृंदावन है। तो ऐसे 12 वन देखे। हम सब तो कभी देखते नहीं है इन वनों को, लेकिन भक्त लोग उत्साह से जाते हैं जो ब्रज मंडल परिक्रमा होता है। तो अगले साल का ब्रज मंडल परिक्रमा बहुत विशेष है। क्यों? क्योंकि इस्कॉन ने अगला जो साल आ रहा है वो 25 साल हो जाते हैं परिक्रमा शुरू है, तो क्या कहते हैं उसको, सिल्वर जुबली, सिल्वर जुबली है। तो उस समय बहुत सारे सन्यासी नेक्स्ट ईयर और बहुत सारे डिवोटीज आ रहे हैं वृंदावन, और विशेष प्रोग्राम्स भी अरेंज किए हैं। वृंदावने गोविंद स्थाने महादेवालय से मंदिरे गोपाले राम महासेवा है। तो अभी वो कहां पहुंचते हैं? वृंदावन में, और उस स्थान में पहुंचते हैं दो ब्राह्मण जहां कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि आज आप जो रूप गोस्वामी के द्वारा स्थापित जो मंदिर और विग्रह है, गोविंद देव का मंदिर है, बहुत विशाल मंदिर, देखा ना, नॉर्थ इंडिया का सबसे विशाल मंदिर कहा जाता है उसको, जो गोविंद देव का मंदिर है। वो औरंगजेब ने तोड़ दिया उस मंदिर को, कई फ्लोर्स इसमें मंजिलों में था। तो उस मंदिर के स्थान पर ये बहुत विशाल मंदिर था और जिसमें ये गोपाल की सेवा हुआ करती थी। केशी तीर्थ कालिया दहा दिके कैले स्नान, श्री गोपाल देखिता करेला विश्राम। तो ये जो दो ब्राह्मण है वो केवल वाहे नहीं गए, कई और वृंदावन के स्थानों को देखा। एक स्थान क्या देखा, केशी नामक आसुर को जहां मारा, केशी घाट आज जाते हैं हम, केशी घाट गए वहां स्नान किया। दूसरा कहा कालिया दह में वो गए। तो इस प्रकार से ये जो ब्राह्मण है इन स्थानों में जाते हैं। गोपाल सौंदर्य दुहार मन नील हरे, सुख पाया रहता दिन दुई चारे। तो एक चीज इनके साथ हो गई, क्यों तीन चार दिन वहां रुके वृंदावन में, क्यों, क्योंकि गोपाल सौंदर्य दुहार, गोपाल का जो सुंदरता है, गोपाल का जो आकर्षक मुख कमल है, मन नील हरि, इनका मन क्या कर लिया, हर लिया उन्होंने, ले लिया। और ये सबसे डिफिकल्ट चीज है मन को कृष्ण को देना। तो इसलिए मैं एक पढ़ रहा था कि जगन्नाथपुरी के बारे में, कि एक राजकुमारी थी जयपुर में और एक जगन्नाथ जी के पंडा थे। तो वो पंडा क्योंकि प्रचार के लिए जाते बाहर, जैसे हम लोग जाते हैं मैं मेंबरशिप बनाओ भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करो, तो वो जो जगन्नाथ जी के भक्त जयपुर गए, तो एक राजा था जो राजा जगन्नाथ जी का बड़ा भक्त था, तो उसकी जो युवती राजकुमारी थी वो भी जगन्नाथ जी से बड़ा उसका आकर्षण था। तो वो पंडा रहा कई दिन, उन्होंने जगन्नाथ कथा आदि किया, लेकिन साधु जहां जाए वहां क्या होना चाहिए, कृष्ण कथा, फ्री का भोजन नहीं उसको स्वीकार करना चाहिए, उसको पे करना पड़ता है अपने कर्म। हाँ, जो साधु जाए वहां किसी ना किसी प्रकार से कृष्ण कथा दे उन लोगों को, ये उसका कर्तव्य है। हाँ, तो फिर जाते हैं कई दिन कथा होता है, तो जब वो निकलते हैं तो राजा कुछ उनको डोनेशन दक्षिणा आदि देता है। तो एक राजकुमारी कहती है कि मैं विशेष एक चीज आप जगन्नाथ जी के लिए ले जाओ मेरी ओर से। तो क्या देती है वो जगन्नाथ जी के लिए, बड़ा सा बहुत सुंदर एक बॉक्स बनाती है, बिल्कुल सजा धजा और प्रॉपरली डेकोरेटेड। तो वो उसको देती है और कहती है आप बहुत केयरफुली इसको ले जाओ, और एक वैल्यूएबल चीज है। और उसको वो भी देती है ले जाने के लिए जो भी आपका खर्चा होगा रास्ते में, प्रसाद लेना, ट्रेवलिंग करना। हाँ, तो वो ले जाते हैं ब्राह्मण, बिल्कुल वो जगन्नाथ के लिए, जगन्नाथ के लिए। हाँ, तो धीरे धीरे जगन्नाथ, और बीच बीच में उनका मन, क्योंकि हम में दो चीजें निवास करती हैं, एक आसुर है और दूसरा देवता के गुण है। तो जो आसुर है वो क्या है, बीच बीच में बाहर निकलता है, बीच बीच में क्या होता है, बाहर निकलता है। एक आर्टिकल आया था एक पेपर में, जहां एक स्कूल की एक लड़के थे जिसका एक कंप्लेंट था, किसी टीचर ने नहीं, किसी मैडम ने उसको पिटाई की, वो अपने प्रिंसिपल के पास गई। तो प्रिंसिपल वो इतना गिरा हुआ था कि वो उसके ऊपर रेप करना चाह रहा था ऑफिस में, तो वो लड़की वहां से भाग गई। तो न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल आया, तो इतना अच्छा, मतलब उसमें एक फोटो दिया था कि जिसमें बहुत सूट टाई, बिल्कुल सूट टाई बूट वगैरह सबके साथ, बिल्कुल एक सुशिक्षित एजुकेटेड व्यक्ति दिखाया था, और उसके बैकग्राउंड में ऐसी एक आसुर दिखाया था जिसके ऐसे हाथ हो या कुछ चीजें। तो उसे पता चलता है कि हमारे अंदर दो प्रकार के ये हैं, और भगवान गीता में कहते हैं एक दैवी संपद है और दूसरा आसुरी संपद है, ये दो प्रकार की चीजें हैं। तो जैसे ही वो जो ब्राह्मण या पंडा पहुंचा जगन्नाथपुरी के बॉर्डर में, तो विचार आने लगा, अरे क्या क्या है इस बॉक्स में, मैं निकाल लो इसमें क्या जगन्नाथ जी को देना। तो रहा नहीं गया, जैसे जैसे मंदिर नजदीक आने लगा वैसे वैसे इसके अंदर का जो ये आसुर है वो बाहर आने लगा। कि ये क्योंकि इतने बड़े सुंदर बॉक्स तो बहुत महंगा और अच्छा था, और पहुंचने से पहले रास्ते में देखा कोई दिख नहीं रहा मुझे जगन्नाथपुरी के अंदर, एक पेड़ के नीचे तोड़ फोड़ के बॉक्स को निकाला, तो उसके ऊपर एक कागज, बस एक छोटा सा कागज था, इतना सा कागज लिखा हुआ। कहते क्या है, ऐसे उन्होंने पकड़ा और फेंक दिया उस कागज को, चले गए। तो ये जो पंडा है ये चीज उसने किसी को नहीं बताई, लेकिन दूसरे दिन जब वो गए पुजारी वगैरह, तो देखा कि जगन्नाथ जी के वो कागज उन्होंने छाते में लगा के रखा है जगन्नाथ जी ने, वो जो कहा पड़ा था उधर कहा रास्ते में पड़ा था। तो पंडा जी ने देखा ये क्या है, ये कागज कहाँ से आ गया रात को। तो जब देखा तो मेन पंडा जी ने निकाला, पढ़ा उसमें क्या लिखा है। तो उसने कहा उस राजकुमारी ने लिखा था कि हे जगन्नाथ, क्योंकि आप तो अपना मन किसी और को दे चुके हो, इसलिए आपके पास अपना मन नहीं है, इसलिए मैं अपना मन किसको दे रही हूँ, आपको दे रही हूँ। तो ये सबसे बड़ी गिफ्ट है कृष्ण को देना। क्या चीज देना, क्योंकि मन जो सारे इंद्रियों का राजा है, और गीता में हर श्लोक में हर चैप्टर में मन की कथा है कि नहीं, किसी भी चैप्टर में आप पढ़ते हैं तो मन को भगवान ने लाए हैं, चाहे अंत के 18वें अध्याय में जाइए, बीच में या शुरुआत में, तो हर समय मन देने की बात करते हैं। तो वो राजकुमारी वो मन भगवान को देते हैं और जगन्नाथ जी बहुत खुश हो जाते हैं। बाकी चीजें तो हर कोई दे सकता है, लेकिन मन को देना सबसे डिफिकल्ट है। हम आरती में होते हैं तभी भी कृष्ण को मन नहीं देते, हम पुजारी होते हैं 4 3 2 7 3 4 5 7 है ना, आरती घुमाते रहते ना, तो लेकिन मन किसी और को दे बैठे हैं। तो ये कला है। तो ये दो ब्राह्मण इसलिए वृंदावन में रह पाए, क्यों, मन उसका भगवान ने हर लिया था, आकर्षित हो गए थे, मन उनका लिया था। तो भगवान कौन सा मन स्वीकार करते हैं, हाँ निर्मल गंदा नहीं, हाँ इसलिए वो एक चोराग्रगण्य अष्टकम भी लिख दिया, हमारे आचार्य बहुत आगे हैं, कि हे भगवान आप तो वो चोराग्रगण्य अष्टकम में काफी सुंदर वर्णन आता है, मुझे याद नहीं, लेकिन कि आप मन चुराते हैं, लेकिन किसका मन चुराते हैं, जो भौतिक भोग की वासनाओं से रहित हो रहा है उनका मन भगवान को आनंद देता है कि नहीं। और सारा गंध भरा हुआ है, ऐसा मन आनंद देगा भगवान को नहीं। तो मन को शुद्ध करने की ये विशेष कला है, कि भगवान के सौंदर्य को हम निहारे, भगवान के सौंदर्य को देखें, भगवान के बारे में सुनते हैं। तो ऐसे ये दो ब्राह्मण चले जाते हैं वहां, और गोपाल का सौंदर्य देखने मात्र से उनका जो मन है वो गोपाल हर लेते हैं। और हम इतने साल प्रैक्टिस करना है क्या, कि मन एक दिन कृष्ण में लग जाए, सारी चीजें यही है, मन एक दिन किस में लग जाए, कृष्ण में, कृष्ण के नाम, कृष्ण के रूप, कृष्ण के गुण, कृष्ण की लीला आदि। दुई विप्र मधेक विप्र वृद्ध प्राय आर विप्र युवा तार करे न सहाय, ये है ददाति प्रतिग्रहणाति। वो कहते दुई विप्र मध्य एक विप्र वृद्ध पाए प्राय, दो ब्राह्मण थे उनमें एक ब्राह्मण क्या था, वृद्ध था, उस दिन ड्रामा में बड़ा वो था, मॉडर्न था ड्रामा, और वो युवा से वो ओल्ड ही ज्यादा चप्पल लग रहा था, एक्सटेसी में था तो। और दूसरा जो विप्र है छोटा था, युवा अवस्था में था और वो उनकी सहायता करता था। छोटा विप्र करे सदा तहार सेवान, तहार सेवाय विप्रेर तुष्ट हैलमान। तो जो युवक विप्र था वो जो ओल्ड बूढ़ा जो ब्राह्मण था उनकी सेवा करता था, और सेवा के द्वारा उनको उनका जो मन है वो तुष्ट हो जाता है, वो ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते हैं। विप्रबल तुम्हें मोरा बहु सेवा कैला, सहाय है या मोरे तीर्थ कराइला। तब इस प्रकार से उस विप्र बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि हे युवा ब्राह्मण, तुमने क्या किया है, मेरी बहुत सेवा की है, और इतनी आपकी सहायता से मैं ये सारे जो तीर्थ स्थान है उनका दर्शन कर पाया, या तीर्थों में भ्रमण कर पाया। तो इस प्रकार से हम आगे फिर पढ़ेंगे किस प्रकार से ये जो दो ब्राह्मण हैं साक्षी गोपाल की सेवा में कैसे रत हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की श्रील प्रभुपाद की नित्याय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।